आस्था के कान्हा जी। अरमान को काफी हैरानी हुई कि अभी तक तो आस्था सबके सामने नॉर्मल थी, लेकिन अचानक से ये इतना क्यों रो रही है। तभी नानी माँ ने आस्था के सर पर कोमलता से हाथ रखकर कहा, गोरी बिटिया शांत हो जा, अब आगे। फिलहाल अरमान इन सब बातों को इग्नोर करते हुए दादाजी, आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान और अभिमान जी के साथ आकर खड़ा हो गया और दादाजी की तरफ देखकर सवाल करने लगा, दादाजी एक बात बताइए, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाने के लिए क्या आपने ये मेंशन किराए पर लिया है। अब जैसे ही अरमान ने ये सवाल किया, वैसे ही दादाजी एकदम से बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, ये सब तो आस्था बिटिया ने किया है, हमने ये मेंशन कोई रेंट पर नहीं लिया है। वो तो आस्था बिटिया इस मेंशन के मालिक को जानती थी, तो उसी ने उनसे बात कर ली थी यहाँ फेस्टिवल मनाने के लिए। दादाजी का ये जवाब सुनकर अरमान को झटका सा लगा। वो बुरी तरह से कन्फ्यूज्ड हो गया था कि एक मामूली सी केयरटेकर होकर ये लड़की इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे जानती है। कहीं ना कहीं अरमान को लगने लगा कि जरूर इस लड़की ने अपनी अदाओं के जादू और बातों के जार में फंसाकर इस मेंशन के मालिक को अपने काबू में कर लिया होगा और इसलिए ये अब इस मेंशन में फेस्टिवल मना रही है, वरना भला कौन इस तरह से इतना बड़ा मेंशन किसी अजनबी को फेस्टिवल मनाने का देता है। अरमान का दिमाग किसी अलग ही डायरेक्शन में जा रहा था। वो वहाँ के जितने भी नौकर चाकर और जितने भी बाहर से आए लोग रात के जागरण में शामिल थे, वो सब पर नज़र रख रहा था। कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा था कि आस्था के पीछे कोई और इंसान है जो उससे जुड़ा हुआ है। अरमान के मन में ये शक था कि आस्था किसी न किसी के साथ सीक्रेटली इन्वॉल्व है और ये बच्चा भी उसी शख्स का है। अरमान मन ही मन यही सब उटपटांग बातों के बारे में सोच रहा था कि किसी न किसी तरह से उसे बस आस्था के खिलाफ कोई सुराख मिल जाए जिससे वो आस्था को सबकी नज़रों में गिरा सके। अक्सर उसे आस्था की बातें पसंद नहीं आती थीं। उसका मन करता था कि वो आस्था को अपने घर से बाहर भगा दे, क्योंकि जिस तरह से वो सब पर हक जताती थी, वही सारी बातें उसे अंदर तक परेशान कर जाती थीं। फिलहाल देर न करते हुए सारे फंक्शन शुरू हो चुके थे। रात भर जागरण चलने लगा। जैसे ही भजन कीर्तन शुरू हुए, सभी लड़कियां सच थच कर नाचने लगीं। आस्था भी सबके साथ मिलजुल कर खुशी खुशी भजन गा रही थी। सभी लोग अपने अपने कपल्स के साथ डांस और भक्ति में डूबे हुए थे। रौनक और रश्मि अपनी प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा संभल कर चल रही थीं और उनके पार्टनर्स भी उनका खूब ख्याल रख रहे थे। वहीं अरमान उनसे थोड़ी दूरी पर बैठा हुआ था और ये सब कुछ अपनी आंखों से नोटिस कर रहा था। आस्था इस वक्त थोड़ी अकेली थी। वो भजन कीर्तन में पूरी तरह मग्न होकर अपने कान्हा की भक्ति में झूमना चाहती थी, लेकिन उस वक्त वो बस कान्हा जी के सामने हाथ जोड़कर नतमस्तक बैठी रही। उसके मन की सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे कान्हा, मेरा परिवार जल्द से जल्द फिर से पहले की तरह ठीक हो जाए और मेरी जिंदगी में एक बार फिर खुशियां लौट आएं। वहीं अरमान की नज़रें बार बार सभी घर वालों पर घूम रही थीं। तभी उसकी नज़र आकाश पर टिक जाती तो कभी सुमित पर। सुमित राधिका को पूरे प्यार से चेयर कर रहा था। वहीं ध्रुव, वंशिका को, रौनक और आहान सब शादीशुदा जोड़ों की तरह बैठकर भक्ति और पूजा पाठ में शामिल हुए थे। इस वक्त भक्ति भरे माहौल में सब कुछ मानो जैसे पवित्र और सुकून से भरा एहसास था। वहीं अरमान बारी बारी से सब पर नज़र डालते हुए अपने ही सवालों में उलझा हुआ था। आखिर ये लड़की इतने बड़े बड़े लोगों को कैसे जानती है और इस मेंशन के लिए इसने इतने पैसे कैसे अफोर्ड किए? आखिर ये लड़की है कौन और करती क्या है? धीरे धीरे रात गहराने लगी और अब उपवास खोलने का समय आ गया। उपवास तो सिर्फ आस्था ने ही रखा था, क्योंकि रौनक और रश्मि प्रेग्नेंट थीं और उनकी हालत उपवास रखने लायक नहीं थी, इसलिए नानी माँ ने उन्हें सख्ती से मना कर दिया था। वंशिका और राधिका भी उपवास करना चाहती थीं, लेकिन राधिका का शरीर वर्षों से कोमा में रहने के कारण शारीरिक रूप से मजबूत नहीं था, इसलिए वो उपवास नहीं रख पाई। वंशिका को अपनी रिसर्च और बाकी कामों पर ध्यान देना था। सच तो ये था कि वो अपना ज्यादातर समय अरमान के लिए एंटीडोट बनाने में गुजार रही थी, इसलिए अंततः उपवास सिर्फ आस्था ने रखा और उसके मन में ये इच्छा थी कि उसका उपवास अरमान के हाथों से ही खुले। ये कोई करवा चौथ का व्रत तो नहीं था, लेकिन आस्था का दिल चाहता था कि अरमान ही उसका व्रत तुड़वाए। आस्था जो काफी देर से अकेली बैठी हुई थी, वहीं वसुंधरा भी आकर उन सबका हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन अरमान ने एक बार भी वसुंधरा की ओर देखना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जब से वसुंधरा उसके घर में नौकरानी बनकर उसकी आंखों के सामने आई थी, तब से अरमान के दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत ही भरी हुई थी। तब बीती, अरमान तो केवल वसुंधरा को एक मामूली सी नौकरानी की तरह ही ट्रीट कर रहा था। उसने उससे ज्यादा उम्मीद नहीं लगाई थी और ना ही किसी तरह से वो उससे कोई उम्मीद रख रहा था। वहीं वसुंधरा अभिमान जी के साथ बैठी हुई थी, लेकिन अभिमान जी ने भी उसे ज्यादा कुछ खास भाव नहीं दिया था। वसुंधरा के मन में यही बात चल रही थी, ये ऐसा कैसे कर सकते हैं जैसे सारी गलती मेरी ही थी। हाँ, मैं जानती हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन मुझे ऐसा किसने बनाया? इसी ने तो बनाया है। फिलहाल वो अपने मन में बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रही थी, लेकिन उसके प्लान कुछ और ही थे। वो पूरी रात वहां गुजार नहीं सकती थी। अब देर न करते हुए वो सीधा वापस सिंघानिया मेंशन आ गई। वीर और वसुंधरा आराम से टांग फैलाकर सो गए। वहीं आस्था अंश को नानी माँ की गोद में सुला चुकी थी और खुद भी सभी लोगों के साथ भक्ति में डूब चुकी थी। वो गोल गोल घूमकर अपनी प्रसन्नता जाहिर करने लगी थी, क्योंकि आस्था पूरा दिन भूखी प्यासी थी और वो ज्यादा देर तक अपनी भक्ति गीत नहीं गा पाई और अचानक उसकी आंखें भारी होने लगी।
अरमान, जिसकी नजरें पूरी तरह से आस्था पर ही टिकी हुई थीं, वो मन ही मन सोच रहा था कि ये लड़की ऐसी वैसी कोई हरकत जरूर करेगी और तब मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा, या फिर हो सकता है कि वो इस फंक्शन का फायदा उठाकर चोरी छुपे किसी न किसी से मिलने वाली हो। अरमान के दिमाग में कितने ही सारे सवाल उथल पुथल मचा रहे थे और उन्हीं का जवाब पाने के लिए वो इस फंक्शन में यहाँ सबके साथ मौजूद था। उसने एक पल के लिए भी अपनी नजरें आस्था पर से नहीं हटाई, हालांकि बीच बीच में वो अपने दोस्तों और भाइयों की ओर जरूर देख लेता था। वहीं आस्था जब गोल गोल घूमकर कान्हा जी की भक्ति में पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई, तब अचानक उसका सिर भारी होने लगा। एकदम से उसकी आंखें बंद होने लगी और वो जमीन पर गिरने वाली थी, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन पर गिर पाती, उससे पहले ही अरमान ने आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में थाम लिया। नानी माँ ने तुरंत मौका देखकर अरमान के हाथों में पानी का लोटा थमा दिया ताकि वो आस्था को पानी पिला दे। उन्होंने कहा, शायद भूखी प्यासी रहने के कारण इसे चक्कर आ गए होंगे। अरमान ने आस्था को पानी पिला दिया और जैसे ही आस्था ने अपनी आंखें खोली, उसने अपने सामने अरमान को देखा तो उसकी आंखें नम हो गई, क्योंकि उसने अपने कान्हा से मन ही मन इच्छा जाहिर की थी कि उसका पति ही उसका व्रत तोड़े और उसकी ये इच्छा पूरी हो गई थी। उसने तुरंत अपने कान्हा को ढेर सारा धन्यवाद दिया। धीरे धीरे रात बीतने लगी। इस बीच रश्मि बहुत ज्यादा थक चुकी थी और वो वहीं एक ओर बैठकर सो गई। कब उसने आकाश के कंधे पर सिर रख दिया उसे पता ही नहीं चला। वहीं रौनक भी आहान के कंधे पर सिर रखकर मजे से सो रही थी और वंशिका ने ध्रुव के कंधे पर सिर रख दिया था। सब लड़कियां सुकून भरी नींद में सोई हुई थीं। आखिरकार वे सब अपने अपने पतियों के साथ सुरक्षित महसूस कर रही थीं। फिलहाल सभी लड़कियां अपने अपने पतियों के साथ एक गहरी नींद में सो चुकी थीं, लेकिन अरमान अब भी तीखी नजरों से उन सबको एकटक देख रहा था। फिर कुछ सोचते हुए वो वहां से उठ खड़ा हुआ और सीधे रघुवंशी मंचन के सेकंड फ्लोर पर चला गया।
उसकी आंखों के सामने बार बार आकाश, ध्रुव और आहान का इस तरह से सभी लड़कियों के साथ डांस करना, फिर उनके कंधों पर सिर रखकर सोना, ये सब उसे अजीब लग रहा था। अरमान सोच रहा था, यहाँ जरूर कुछ ऐसा चल रहा है जो मेरी आंखों से जानबूझकर छुपाया जा रहा है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया एक मिनट के लिए ठहर गई थी। अरमान ज्यादा देर तक अपने भाइयों और दोस्तों को इस तरह देख नहीं पाया और सीधे रघुवंशी मैंशन के सेकंड फ्लोर पर आ गया। वहां आते ही उसने इधर उधर नजरें दौड़ाई। अब उसकी आंखें थोड़ी भारी भारी सी होने लगी थीं। उसने सोचा कि उसे एक बार फिर ब्लैक कॉफी पी लेनी चाहिए ताकि वो 2 से 3 घंटे और जाग सके। उसने तुरंत एक नौकर को इंस्ट्रक्शन दिए कि वो उसके लिए कॉफी लेकर आए। जल्दी ही एक नौकर उसके लिए कॉफी लेकर आ गया। वहीं आस्था अरमान को सेकंड फ्लोर पर जाते हुए देख चुकी थी। वो उस वक्त उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो ये सोचकर रुक गई कि कहीं अरमान उसे गलत न समझ ले कि वो उसे रात के अंधेरे में सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए आस्था ने उसके पीछे जाने का इरादा छोड़ दिया। वहीं अरमान जैसे जैसे कॉफी पीने लगा, वैसे ही उसे अचानक अजीब सा लगने लगा। अगले ही पल उसे हल्का चक्कर आने लगा। जब वो थोड़ा संभल गया तब वो वापस नीचे आ गया। उसने एक नज़र दादाजी की ओर देखा। दादाजी उस वक्त पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए थे, अपने हाथ जोड़कर कान्हा की आराधना कर रहे थे। धीरे धीरे सुबह हो चुकी थी। सबने खाना पीना शुरू कर दिया। रात इसी तरह गुजर गई। आखिरकार सबने अपनी अपनी पार्टनर्स को गोद में उठाकर उनके कमरों में ले जाकर सुलाने का फैसला किया। तभी अरमान को सामने देखकर वो थोड़ा सा पीछे हट गए, लेकिन आहान मारमान को देखकर दबी हुई मुस्कान के साथ बोला, उफ़ो, देखिए ना भाई, ये लड़कियां कितनी ज्यादा कमजोर होती हैं। देखा आपने, ये पूरी रात जाग नहीं पाई और कैसे मेरे कंधे पर सिर रखकर घोड़े बेचकर सो गईं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लड़की हैं। मैं एक काम करता हूँ, इस लड़की को ले जाकर उसके कमरे में सुला कर आता हूँ। ये बोलने के बाद आहान जल्दी से आगे बढ़ा और रौनक को गोद में उठा लिया और वापस सिंघानिया मेंशन जाकर उसे कमरे में बहुत ही सावधानी से लिटा दिया। अरमान बस खाली खाली नजरों से आहान को एकटक जाते हुए देखता रहा। उसने आहान से एक भी शब्द नहीं कहा। जब अरमान ने रौनक को ले जाते हुए देखकर भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, तब ध्रुव की भी थोड़ी हिम्मत हुई। वो दबी हुई आवाज में बोला, भैया, ये लड़की भी गहरी नींद में सो गई है। वैसे भी ये बेचारी काफी मेहनत कर रही है एंटीडोट बनाने के लिए। मैं काम करता हूँ, मैं भी इसको इसके कमरे में सुला देता हूँ। ये बोलकर ध्रुव ने फटाफट वंशिका को गोद में उठाया और वहां से 9:00–11:00 हो गया। इसी तरह आकाश और सुमित ने भी अपनी अपनी पार्टनर्स को उठाया और उन्हें ले जाकर सुला दिया। अब केवल वहां नानी माँ थी, जिन्होंने पूरी रात भर जागरण करके कान्हा की भक्ति की थी। अब उनकी भी आंखों में नींद भर चुकी थी। वो आस्था की ओर देखकर कोमलता से बोली, अच्छा बेटा, मैं अब अपने कमरे में जा रही हूँ सोने के लिए। वैसे तुम चाहो तो यहाँ भी सो सकती हो, लेकिन ये अलग जगह है तो हमें यहाँ नींद नहीं आने वाली, क्योंकि हमें तो अपने कमरे की आदत पड़ चुकी है, इसीलिए हम वहीं सोने जा रहे हैं। बेटा, अंश का ध्यान रखना, वो सोया हुआ है। ये बोलने के बाद नानी माँ ने अपनी पूजा पूरी की और फिर वहां से उठ खड़ी हुई और सीधा सिंघानिया मेंशन में चली गई। वहीं अभिमान जी भी दादाजी को संभालते हुए वहां से चले गए। अब वहां केवल अरमान, आस्था और अंश ही मौजूद थे।
आस्था, जो कि पूरी रात की भागदौड़ और जिम्मेदारियों के कारण काफी ज्यादा थक चुकी थी, उसकी आंखें बार बार भारी हो रही थी। ऊपर से उसे अंश को भी लेकर मेंशन जाना था, इसीलिए वो पूरी तरह कंफ्यूज थी कि वो अरमान से मदद मांगे या ना मांगे। वहीं अरमान अब पूरी तरह से आस्था की सिचुएशन समझ रहा था, लेकिन वो चाहता था कि आस्था खुद आगे बढ़कर उससे मदद मांगे, इसीलिए अरमान ने ऐसा दिखाया मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो।